नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन से अलग चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। भारत और पाकिस्तान श्री करतारपुर साहिब गलियारे पर समझौते की अवधि 5 वर्ष बढ़ाने पर सहमत। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के लिए प्रतिनिधि पंजीकरण शुरू। सरकारी स्वामित्व वाली BSNL ने ग्राहकों को लुभाने के लिए 7 नई ग्राहक केंद्रित सेवाएं आरंभ की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुमान को 7% पर बनाए रखा। और ACC पुरुष T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप में आज शाम अल अमीरात में भारतीय का सामना मेजबान ओमान से। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन के अवसर पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों देशों के बीच नियंत्रण रेखा पर गश्त की व्यवस्था के बारे में हाल के समझौते को देखते हुए इस बैठक का महत्व बढ़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच पिछले 5 वर्षों में यह पहली सुनियोजित बैठक होगी। विदेश सचिव विक्रम मिश्रा ने इसकी पुष्टि की।
I can confirm that there will be a bilateral meeting held between Prime Minister Modi and President Xi Jinping 23rd of October on the sidelines of the BRICS summit. The exact time and other logistics are being worked out, but the meeting will take place.
श्री मोदी ब्रिक्स सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल रूस और ईरान के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी ने इन दोनों देशों से संबंधित मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि युद्ध से कोई समाधान संभव नहीं है। श्री पुतिन के साथ बैठक में श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान में सहायता करने को तैयार है। विदेश सचिव ने पत्रकारों को बताया कि प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के नेतृत्व के साथ अपनी मुलाकात से राष्ट्रपति पुतिन को अवगत कराया और कहा कि भारत क्षेत्र में शांति कायम करने के योगदान का इच्छुक है।
Prime Minister reiterated his views that war and conflict would not solve. There was a need for direct engagement between the parties most directly involved in the conflict, but also that India stood ready to aid and assist in any manner possible. It is in this context that starting from the Prime Minister's visit to Moscow in July this year, subsequently going on to his visit to Kyiv in August this year,
ब्रिक्स सम्मेलन से पहले श्री मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजस्कियन के बीच भी बैठक हुई। उन्होंने पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। विदेश सचिव विक्रम मिश्रा ने बताया कि श्री मोदी ने बढ़ते संघर्ष पर गंभीर चिंता प्रकट की और नागरिकों की सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में भारत का दृष्टिकोण दोहराया। उन्होंने तनाव दूर करने के लिए वार्ता और कूटनीतिक उपायों पर बल दिया। श्री मोदी ने ईरान के साथ सदियों पुराने संबंधों को और मजबूत करने के प्रति भारत की वचनबद्धता भी दोहराई। विदेश सचिव ने कहा कि दोनों नेताओं ने चाबहार बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति कायम करने वाले देश के रूप में उभरा है।
भारत विश्व शांति के निर्माता के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय वार्ताएं इसी बात की पुष्टि करती हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान करने में मदद करने की पेशकश पर मोदी जी को पुतिन जी ने सराहा। ये भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है। भारत का नेतृत्व पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त करता है, नागरिक सुरक्षा और राजनयिक संवाद की वकालत करता है। शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान और संवाद की प्रतिबद्धता भारत को विश्वसनीय वैश्विक शांति निर्माता के रूप में स्थापित करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ शांति स्थापना जैसे बहुपक्षीय मंचों में भागीदारी के साथ भारत वैश्विक संवाद के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नसीम नकवी, आकाशवाणी समाचार, कजान।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने सीमा पर तनाव कम करने के लिए हाल के भारत चीन समझौते पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने आशा प्रकट की है कि अब दोनों देशों के बीच अच्छे पड़ोसी संबंध और मजबूत होंगे। दैनिक संयुक्त राष्ट्र ब्रीफिंग के दौरान श्री गुतरश ने दोनों देशों के बीच किसी भी सकारात्मक पहल का स्वागत किया और आपसी संबंध प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। श्री गुतरश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और पाकिस्तान श्री करतारपुर साहिब गलियारे पर समझौते की अवधि 5 वर्ष बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इससे पाकिस्तान जाने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों को आसानी होगी। करतारपुर साहिब गलियारे के रास्ते भारत से हजारों सिख श्रद्धालु हर साल पाकिस्तान जाते हैं। भारत सरकार ने तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए 24 अक्टूबर 2019 को पाकिस्तान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जो 5 वर्ष की अवधि के लिए था। मध्य प्रदेश सरकार ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिगों को मिशन वात्सल्य योजना के तहत विभिन्न सुविधाएं देने का निर्णय लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना का उद्देश्य लैंगिक अपराध से पीड़ितों को पॉक्सो के अंतर्गत संरक्षण और केंद्र सरकार के निर्भया फंड से वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कल मिशन वात्सल्य के अंतर्गत दुष्कर्म पीड़ित बच्चियों को शिक्षा, पुलिस सहायता, मातृत्व नवजात शिशु देखभाल, मनोवैज्ञानिक परामर्श, कानूनी सहायता, स्वास्थ्य बीमा, देखरेख संस्थानों में आश्रय जैसी सुविधाएं देने का निर्णय लिया गया। इस योजना का लाभ उठाने के लिए FIR की प्रति होना आवश्यक नहीं है। पीड़ित नाबालिग बालिका को गैर संस्थागत देखभाल के लिए 4,000 रूपए प्रतिमाह भी दिए जाएंगे। योजना पर अमल कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए निर्भया फंड से प्रत्येक जिले को 10 लाख रुपए भी उपलब्ध कराए जाएंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के लिए प्रतिनिधि पंजीकरण शुरू हो गया है। फिल्म महोत्सव गोवा में 20 से 28 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। फिल्म प्रेमी my.iffigoa.org पर पंजीकरण करा सकते हैं। इसका शुल्क 1,180 रूपए रखा गया है। विद्यार्थियों को फिल्म देखने के लिए रोजाना 4 टिकट निःशुल्क मिलेंगे। एक रिपोर्ट।
55वें फिल्मोत्सव में विश्व स्तरीय फिल्में, दिल को छू लेने वाले नाटक, रोमांचक वृत्तचित्र और लघु फिल्में दिखाई जाएंगी। इसमें फिल्म बाजार, क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो और सिनेमेला के अलावा दिग्गज फिल्म निर्माताओं और उद्योग के पेशेवरों द्वारा कार्यशालाएं और मास्टर कक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। 1952 में स्थापित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एशिया के प्रमुख फिल्मोत्सवों में शामिल है। इसका आयोजन राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय गोवा सरकार की सहयोग से प्रतिवर्ष करता है। प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए नई ग्राहक केंद्रित सेवाएं शुरू की हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 4G की शुरुआत के बाद से BSNL के उपभोक्ताओं की संख्या पिछले 6 महीने में 75 लाख से बढ़कर 1,80,00,000 हो गई है।
And today we are among the 6 countries in the world to develop our own 4G telecom stack, which will soon migrate to even 5G. That is a huge accomplishment for India. The concept of Atmanirbharta is enshrined within BSNL.
हमारे संवाददाता ने बताया है कि BSNL का नया शुभंकर शक्ति, विश्वास और सुगमता का प्रतीक है।
नए प्रतीक चिन्ह के अलावा देश में संचार सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से BSNL की 7 नई सेवाएं भी शुरू की गई है। इनमें स्पैम मुक्त भारत, नेशनल वाईफाई रोमिंग, इंटरनेट फाइबर टीवी, एनी टाइम कियोस्क, डायरेक्ट टू द डिवाइस सेवा, सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा राहत और खदानों में पहले 5G की सुविधा भी शामिल। राष्ट्रीय वाईफाई रोमिंग सुविधा अपने फाइबर टू द होम ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के BSNL हॉटस्पॉट पर मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करेगी। BSNL ने खनन कार्यों के लिए 5G नेटवर्क की भी शुरुआत की है। भानु प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले चालू वित्तीय वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7% बनाए रखी है। विश्व की आर्थिक स्थिति के बारे में नवीनतम अनुमान में IMF ने कहा है कि अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान है। डेलाइट इंडिया ने भी अपने नवीनतम आर्थिक परिदृश्य में भारत की वृद्धि दर चालू वित्तीय वर्ष में 7 और 7.2% के बीच रहने का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल समाचारों के साथ है मुकेश कुमार बल।
ACC पुरुष T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप में आज अल अमीरात क्रिकेट ग्राउंड में भारत ए का सामना मेजबान ओमान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। इधर भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कल पुणे में खेला जाएगा। मैच महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। 3 मैचों की श्रृंखला में न्यूजीलैंड 1-0 से आगे है। वहीं सुल्तान जोहोर कप हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने मेजबान मलेशिया को 4-2 से हराकर लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ भारत 9 अंक के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर है। आज भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारत इस प्रतियोगिता का खिताब 3 बार जीत चुका है। इसके अलावा काठमांडू में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में ग्रुप ए के अंतिम मैच में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5:15 बजे से खेला जाएगा। भारत पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। उधर वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजकों ने हॉकी, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, निशानेबाजी, क्रिकेट और स्क्वैश जैसे प्रचलित खेलों को प्रतियोगिता से हटाने का निर्णय लिया है। राष्ट्रमंडल खेल स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच होंगे।
बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान दाना 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। इसके बृहस्पतिवार और शुक्रवार रात केंद्रपाड़ा में भितरकणिका तथा ओडिशा तट के भद्रक या बालासोर से टकराने की आशंका है।
उड़ीसा सरकार ने चक्रवाती तूफान दाना के संभावित भूस्खलन से होने वाली भारी नुकसान के मद्देनजर जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा, भद्रक और बालेश्वर के तटीय जिलों के प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा है। 14 तटीय और पड़ोसी जिलों के सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय आज से 3 दिनों के लिए बंद है। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने पहले ही 198 ट्रेन रद्द कर दी है। IMD द्वारा अनुमानित रेड जोन जिलों में निकासी और राहत कार्यों के लिए आपदा कार्रवाई दल तैनात किए गए हैं। इस बीच उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विधायकों से राहत और बचाव कार्यों का समन्वय करने का आग्रह किया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
मौसम विभाग ने आज ओडिशा सहित देश के पूर्वोत्तर भाग में मूसलाधार बारिश होने की आशंका व्यक्त की है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और केरल में भी आज तेज बारिश होने का अनुमान है। गांगे, पश्चिम बंगाल में आज और कल, झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। वहीं अगले 2 से 3 दिन के बीच कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र के मध्य हिस्से में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। इस सप्ताह के दौरान देश के मध्य और उत्तरी पश्चिमी भाग में मौसम साफ रहने की संभावना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, JMM और राष्ट्रीय जनता दल RJD ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 35 और राष्ट्रीय जनता दल ने 6 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के पहले दिन कल विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के 57 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे। अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है नईम अख्तर।
धन्यवाद निखिल। रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से जुड़े समाचार आज अखबारों के पहले पन्ने पर हैं। हिंदुस्तान, जनसत्ता, राष्ट्रीय सहारा, राजस्थान पत्रिका और दैनिक ट्रिब्यून ने प्रधानमंत्री के बयान को सुर्खी बनाया है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने में भारत मदद के लिए तैयार। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रपति पुतिन के इस कथन को प्रमुखता दी है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमारे संबंधों में अनुवादक की जरूरत नहीं। दैनिक जागरण का शीर्षक है, श्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच आज होगी वार्ता, कल रात्रि भोज पर हुई दोनों नेताओं की भेंट। वहीं नवभारत टाइम्स ने अपने विशेष आकलन में दिया है, भारत के लिए क्यों खास है ब्रिक्स। हरिभूमि के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिसंबर में करेंगे रूस की यात्रा, आपसी रक्षा संबंधों पर होगी चर्चा। दैनिक भास्कर की खबर है, 10 साल में म्यूचुअल फंड में निवेश दोगुना और शेयर पेंशन में निवेश 7% से बढ़कर 12% हुआ। वीर अर्जुन ने RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा के भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष में 7.2% की दर से बढ़ने का अनुमान दिया है। पंजाब केसरी, देशबंधु और राजस्थान पत्रिका के खेल पन्ने की सुर्खी है, ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, क्रिकेट और निशानेबाजी जैसे कई खेल बाहर।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन से अलग चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। भारत और पाकिस्तान श्री करतारपुर साहिब गलियारे पर समझौते की अवधि 5 वर्ष बढ़ाने पर सहमत हुए। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के लिए प्रतिनिधि पंजीकरण शुरू। सरकारी स्वामित्व वाली BSNL ने ग्राहकों को लुभाने के लिए 7 नई ग्राहक केंद्रित सेवाएं आरंभ की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुमान को 7% पर बनाए रखा। और ACC पुरुष T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप में आज शाम अल अमीरात में भारत ए का सामना मेजबान ओमान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।